हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज आषाढ़ी एकादशी का दिन है। इस एकादशी को देव शयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान और देवता शयन करते हैं, यानी कि सो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है, विष्णु शयनी एकादशी भी है। इसके अधिष्ठाता स्वयं श्री कृष्ण श्री विट्ठल हैं। जब सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होता है तो ये एकादशी आती है, और ये 4 महीने के लिए ये समय रहता है जिसमें भगवान सब देवता शयन करते हैं। और जब सूर्य राशि सूर्य भगवान तुला राशि में प्रवेश करते हैं, तुला राशि 12 प्रकार की राशि होती है, और सूर्य एक एक महीना एक एक राशि समूह में रहता है। जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो फिर वो नासिक का सिंहस्थ मेला कुंभ मेला लगता है। तो कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद में तुला राशि में प्रवेश करने तक 4 महीने का समय होता है। ये सब लोग जितने वैष्णव जन हैं सन्यासी जन हैं वो सब लोग सफ़र करना छोड़ देते हैं और एक ही जगह रहते हैं, और एक जगह रहकर भगवान की अर्चना भगवान की पूजा नाम जप श्रवण आदि ग्रंथ पठन उपवास तपस्या ये सब करते रहते हैं। तो चतुर्मास का समय जो है वो भगवान की भक्ति के लिए बहुत अनुकूल माना गया है। तो इस एकादशी के बारे में और वैष्णव व्यवहार के बारे में तुकाराम महाराज बहुत सुंदर वाक्य बताते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति दुनियादारी के उत्सव में रुचि नहीं रखता है, यानी किसी की एंगेजमेंट है, किसी की शादी है, किसी का कुछ फलाना है, दुकान का उद्घाटन है, जो व्यक्ति ऐसे दुनियादारी के भौतिक उत्सवों में रुचि रखता नहीं है, और जो हमेशा भगवान के धाम में जाने के लिए उत्सुक रहता है, जैसे पंढरपुर, अब भगवान के धाम में भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान के भक्तों का संग करने के लिए, और उस उत्सव में उस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए उत्सुक रहता है, जहाँ जहाँ भगवान का भक्तों का संग होता है, भगवान के भक्तों के संग में कीर्तन होता है, वहाँ पर प्रवचन होता है, वहाँ पर कथा होती है, सेवा होता है, इस जगह पर जाने के लिए उत्सुक रहता है, और वो व्यक्ति एकादशी के व्रत को पालन करने के लिए भी उत्सुक रहता है। श्री कृष्ण भगवान श्री विट्ठल जी उसको अपने पास आने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। श्री कृष्ण इज़ वेरी ईगर ईगरली वेटिंग फॉर दैट पर्सन। पांडुरंग वाट पाहे, हाँ, ऐसे व्यक्ति की भगवान में इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए भगवान का दिल अगर आकर्षित करना है तो हमें अपनी अपनी मनोवृत्ति बनानी पड़ेगी। जब तक हमारी मनोवृत्ति भगवान के अनुकूल नहीं बनेगी, जब तक हमारा मन विषयों से नहीं हटेगा, विषयों के भोग और आनंद के से नहीं हटेगा, तब तक भगवान हमारे ऊपर आकर्षित नहीं हो सकते। इसलिए तुकाराम महाराज जी ने सुंदर वाक्य बताया। तो हम कुछ एकादशी के बारे में सब लोगों को बताना चाहेंगे। आपको सबको पता है, फिर भी आज के दिन एकादशी का महात्म्य बताना बहुत ज़रूरी है। एक बार सब गोपियाँ मिलकर राधा रानी के पास जाती हैं और राधा रानी को कहती है कि आपने कृष्ण को ऐसे वश कैसे करके रखा है, वो क्या रहस्य है जो आपने कृष्ण भगवान को अपने वश में करके रखा है, वो हमेशा आपके वश में रहते हैं। तो राधा रानी ने सब लोगों को गोपियों को एकांत में ले गई, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसका पूरा वर्णन आया है, पूरा लंबा चौड़ा वर्णन आया है। उसके अंदर राधा रानी सब गोपियों को बिठाकर बड़ी शांति से और इत्मीनान से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाती है। 26 एकादशियों का उन्होंने वर्णन दिया है, और उस एकादशी वर्णन में वो कहती है कि हर एक एकादशी अपने अपने जगह पर परिपूर्ण है, लेकिन सामान्य व्रत जो है एकादशी का वो है अन्न से हम लोग अपने आप को अलग रखते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और फल फलाहार करते हैं, और विशेष रूप से भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं और भगवत सेवा में अपने इंद्रियों को मग्न रखते हैं। और इंद्रियों को विषयों से दूर रखते हैं, यानी कि कोई बेफजूल की बातें नहीं करते हैं, कोई गलत चीज़ देखते नहीं हैं, कोई गलत चीज़ सुनते नहीं हैं, कुछ गलत चीज़ मुंह में डालते नहीं हैं। ये एकादशी का व्रत है इंद्रियों से। आगे ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही ये श्लोक दिया गया है, उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैसह उपवासः स विज्ञेय सर्वभोग विवर्जितः। मतलब जो इंद्रियों के भोग है उसको हम त्याग कर देते हैं। उपवास करने से राधा रानी बताती है कि ये 26 एकादशियों का व्रत पालन करने से मैं सहजता से कृष्ण को अपने वश में करती हूँ। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि एकादशी व्रत इतना महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत साक्षात कृष्ण भगवान को प्रसन्न करता है और एकादशी व्रत करने से सारे व्रतों का लाभ मिलता है। जैसे हम गणपति के लिए मंगलवार का व्रत करते हैं, देवी के लिए शुक्रवार का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत शंकर जी के लिए करते हैं, लेकिन इन व्रतों की ऐसी खासियत है कि उनके पीछे कुछ हेतु होता है कि सोमवार का व्रत करने वाले लोग शायद अच्छा पति चाहते हैं, है ना, शुक्रवार का व्रत करने वाले भी अच्छा पति चाहते हैं, रविवार का व्रत करने वाले अच्छा आरोग्य चाहते हैं, मंगलवार का व्रत करने वाले बल चाहते हैं। ऐसे अलग अलग व्रतों का अलग अलग एक फल है, वो फल के हेतु सारे व्रत किए जाते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत जो है वो एक निस्वार्थ व्रत है। और वो बाकी सारे व्रत जो होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं, 16 शुक्रवार 16 सोमवार ऐसा एक समय होता है, उसका पीरियड होता है, लेकिन एकादशी का व्रत जो है जन्म लेने से अंत तक होता है। ये चिरंतन व्रत है, ये कुछ समय के लिए किया गया व्रत नहीं है, कुछ टेम्पररी क्या कहते हैं उसको क्षणभंगुर लाभ को लेने के लिए किया हुआ व्रत नहीं है। इस व्रत की केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही उसका ध्येय है, वो है श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करके उनकी सेवा करना, उनकी कृपा प्राप्त करना। तो इस व्रत में और एक वर्णन ऐसा आता है कि एकादश यानी दश इंद्रियों पर नियंत्रण और पवित्रता प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत होता है। वो दश इंद्रिया कौन सी हैं? 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन सी हैं? एक आँख, दूसरे कान, तीसरा नाक, चौथा जीवा और 5वां त्वचा स्पर्श। हाँ, और 5 कर्मेंद्रिय कौन से हैं? 2 हाथ, 2 पैर और कंठ जिसे हम बोलते हैं, और चौथा पेट, उदर और 5वां गुदा। इसमें से शायद पेट नहीं है, जननेन्द्रिय है और गुदस्थान है जहाँ पर से हम विष्ठा विसर्जन करते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रिय कहा गया है और 5 ज्ञानेन्द्रिय कहा गया है। 5 ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से हमको इस विश्व के बारे में ज्ञान मिलता है। आप सोचिए, आपको जो जो ज्ञान प्राप्त होता है ये 5 ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त होता है। जो दिखता है, जो सुनते हैं, जो सूंघते हैं, जो टेस्ट करते हैं, जो स्पर्श करते हैं, इससे हमें विश्व की अनुभूति प्राप्त होती है। और कर्मेंद्र उन 5 ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा प्राप्त किए ज्ञान के आधार पर हम कर्मेंद्रियों को कर्म में लगाते हैं और उससे कर्म होते रहते हैं। तो ये 10 इंद्रियों को पवित्र करना बहुत जरूरी है। जब तक ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय शुद्ध नहीं होते हैं, तब तक भगवान की ओर हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो ये एक दिन हमने भगवान ने हमको दिया है, महीने में 2 बार आता है एकादशी, यानी कि जो 11वां दिन होता है दोनों पक्ष में, वैक्सिंग एंड वेनिंग मून, कृष्ण पक्ष और चंद्र शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसमें ये दिन आता है। इसे कहा गया कि इस दिन हमारी चेतना, जो वैश्विक चेतना है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उसके पास में रहती है। ये एक खगोल शास्त्रीय सत्य है। जो हमारी आत्मा है, भगवान का अंश है, वो भगवान के इस दिन पास में रहती है। तो इस दिन का लाभ लेते हुए सब लोग इंद्रियों का, जो बहुत बड़ा काम करते हैं इंद्रियों, रोज़ हमारे इंद्रियों भोग लेने का, उसको हम थोड़ा बाजू में रखते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ खाते ही नहीं हैं, खा सकते हैं शरीर को चलाने के लिए, लेकिन जो मेन चीज़ दिन भर हम करते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग विराम देते हैं। और अन्न ग्रहण न करने से जो शक्ति बचती है, देखो अन्न करने में, अन्न तो पकाना पड़ता है ना, पहले भोजन बनाना पड़ता है, सब स्त्रियाँ माता जी जानते हैं, प्रभु जी जानते हैं कि अन्न को बनाने में बहुत टाइम लगता है, खाने में 10 मिनट में लंच हो जाता है हमारा, होता है कि नहीं? उसको बनाने में, फिर बर्तन धोना है, फिर परोसना है, फिर कितनी सारी चीज़ें हैं, वो जो समय बचता है उसके बाद जब हम खाते हैं तो उसको हजम करने के लिए भी समय लगता है, और वो हजम करने के समय में भी निद्रा आती है, आलस्य आता है, सुस्ती आ जाती है। तो ये सब भजन के लिए प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, इसलिए इस दिन अन्न को वर्ज करते हैं। और जो समय बचता है बनाने में, परोसने में, धोने में, हाँ, रांधा वाड़ा, उष्टी काढ़ा, ये सब में जो समय बचता है भोजन करने के बाद, हजम करने में, पचन करने में समय बचता है, उसका क्या करना है? वो सारा समय भगवान की स्मृति में, भगवान के ध्यान में, भगवान के कीर्तन में अर्पण करना है। तो उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है? उपोष्य यानी पास में रहना, उप यानी पास में, नजदीक, सान्निध्य, सान्निध्य, और वास यानी निवास करना। तो केवल अन्न छोड़ना ये उपवास का उद्देश्य नहीं है, वो तो एक बहिरंग है उसका। उपवास को अन्न छोड़कर बाकी चीजें इंद्रियों के भोग वाली न करते हुए भगवान के निकट रहना, ये उपवास की सफलता है। इसलिए हम इस दिन कोई भी प्रजल्प वाली बातें नहीं करते हैं, ना करना चाहिए। जहां पर भी आपको लग रहा है कि आज के दिन कोई ऐसे बेफजूल की, बिना मतलब की बातें कर रहा है, जो करना जरूरी नहीं है, जो आवश्यक नहीं है, उन बातों को आज नहीं करना चाहिए। मुंह तब खोलना चाहिए जब हमको लगे कि जरूरी है, तभी मुंह खोलना चाहिए जरूरी बात करने के लिए जो भगवान की सेवा से संलग्न है। कानों को वही सुनना चाहिए जो भगवान के विषय में और भगवान की सेवा में है, और कोई प्रजल्प कर रहा है तो प्रामाणिक भक्त को वहां से नम्रता से निकल जाना चाहिए। आज के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से तपस्या भंग हो जाती है, तपस्या का फल नष्ट हो जाता है, तपस्या की विधि नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रोध को जितना हो सके उतना टालना चाहिए, और खाना वही चाहिए जो भगवान को अर्पण किया, और निश्चित रूप से बाकी दिन भी वही खाते हैं, लेकिन इस दिन अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे कहा गया है कि इस दिन मूर्तिमान पाप जो है, जिसका भगवान पीछा कर रहे थे, वो जाकर अन्न के खेत में लुप्त हो गया। अन्न के खेत में जाकर लुप्त हो गया मतलब पाप जो है वो अन्न रूप बन गया, अन्न के अंदर पाप घुस गया आज के दिन। इसलिए एकादशी के दिन हम पाप नहीं ग्रहण करते, अन्न नहीं ग्रहण करते, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से पाप हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो करम महाराज कहते हैं, एकादशी अन्न ग्रहण श्वान विष्टे समान। सोच सकते हैं आप श्वान विष्टा क्या होती है? कुत्ता जब अपना मल विसर्जन करता है उसको खाने जैसा है एकादशी में। और जगह लिखा हुआ है कि एकादशी में अन्न खाने यानी गौ मांस खाने जैसा है, अनजाने में भी नहीं खाना चाहिए, इतना पाप लगता है एकादशी में। एकादशी में न खुद खाना चाहिए अन्न, न किसी दूसरे को देना चाहिए। अगर रहना देना ही है आपको बचा हुआ, तो एकादशी के बाद वाले दिन देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का प्रादुर्भाव होता है। जो व्यक्ति एकादशी में अन्न ग्रहण करता है वो यमदूत के स्वाधीन हो जाता है। वो कहते हैं, तुकाराम महाराज कहते हैं, हाँ अगर आपको अन्न खाना है तो कोई बात नहीं है, आपके लिए यमदूत बुक करके रखे हैं हमने। ऐसे एक अभंग में बहुत जोरदार वाक्य तुकाराम महाराज बताते हैं। और एक वो बात बताते हैं, एकादशी एकादशी में जो जुगाड़ खेलते हैं, खुंटी हानी गुदास्तानी, खुंटी मालूम है? खुंटी किला ठोकना। कहाँ पर? गुदास्तानी। यमदूत हमारे गुदास्थान में किला ठोकते हैं अगर कोई एकादशी में गलत काम करता है तो। एकादशी में चोरी करना, एकादशी में झूठ बोलना, एकादशी में अन्न प्राप्त करना, एकादशी में जुगाड़ खेलना, एकादशी में व्यभिचार करना, एकादशी में शराब पीना, ऐसे जो कार्य है, महत पाप कार्य है, उसको यमदूत बहुत कड़ी पीड़ा देते हैं। नरकवास तो निश्चित है, लेकिन नरकवास में भी बहुत कड़ी पीड़ा उन लोगों को मिलती है जो एकादशी के दिन पाप करते हैं। ऐसे कहा गया है कि एकादशी के दिन तीन प्रकार का उपवास होता है। एक होता है निर्जला उपवास, जो सर्वश्रेष्ठ उपवास कहा गया। एक्चुअली उपवास की व्याख्या जो है वो निर्जला उपवास से ही होती है, लेकिन जिनको निर्जला उपवास नहीं होता है करने के लिए, उनके लिए सजल उपवास कहा गया है, यानी कि वो जल पी के उपवास कर सकते हैं। जिनको सजल भी करना मुमकिन है उनको सफल उपवास बताया है, यानी कि फल के साथ। और दुर्भाग्य से इसके आगे कोई उपवास की वर्गीकरण की व्याख्या नहीं की गई, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ओनली। हाँ, लेकिन अभी क्या करें, अभी कलयुग में समय ऐसा है कि बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। हाँ नहीं, वो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप खिचड़ी मत खाओ, मेरा काम वो है जो शास्त्र में लिखा है वो आपको बताना है। कम से कम हम लोगों को जानकारी तो होनी चाहिए। हाँ क्योंकि इसमें अभी एकादशी में आप खिचड़ी खाएंगे सब जाना कि तो पाप नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो सही जानकारी अगर हम लोग अभी जीवन में हमारे परम लक्ष्य से करोड़ों मील दूर हैं फिर भी आपको वो लक्ष्य क्या है पता होना जरूरी है। हम बोलेंगे बॉम्बे बेटी किधर है, अरे बॉम्बे बेटी क्या, अभी कुर्डुवाड़ी का सोचो पहले, बॉम्बे बेटी बहुत दूर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका लास्ट स्थान बॉम्बे बेटी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। वो आपको अगर पता ही नहीं है तो कुर्डुवाड़ी पहुंचने के बाद आप कहाँ जाएंगे। इसलिए अभी हमको पता है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है जीवन में हमको। बोले प्रभु जी बहुत दूर की बात है, अभी क्यों इतनी बड़ी बातें करते हो। बोले इंद्रियों के दमन की बातें करो, लेकिन इंद्रियों को दमन की बातें करने के साथ साथ भी परम लक्ष्य क्या है पता होना जरूरी है। उसी तरह से वास्तविक ज्ञान पाने का हर व्यक्ति को अधिकार है और हर व्यक्ति को वो जान लेना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन उसी के लिए दिया गया। इसलिए हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, भक्ति में तो बहुत चरम स्थितियां हैं, परम परम स्थितियां भी हैं, हो सकता है वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन जानकारी करना बहुत जरूरी है, लक्ष्य बनाने के लिए वो आवश्यक है। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उनको हजारों मंदिर स्थापन करने थे, लाखों किताबों का वितरण करना था। तो अगर वो टॉम्पकिंस स्क्वायर पार्क के गार्डन में बैठे हुए हैं तो लोग उनको बोल रहे हैं तो ये तो पागल व्यक्ति है, इसके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लक्ष्य उनका बहुत स्वच्छ था, क्लियर था उनके मन में। इसलिए आज वो हमको जीवन में दिखाई पड़ रहा है, हमारी आंखों के सामने सत्य होते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि किसी दृष्टा व्यक्ति ने एक समय पर उसको मन में लक्ष्य के रूप में बनाया था। प्रभुपाद हैड एनविसाज्ड दैट हाईएस्ट गोल इन हिज माइंड। जब हमारे हेतु में आता है तो फिर कृति में बाद में पैदा होता है, फिर दृश्य रूप में प्रकट हो जाता है। पहले संकल्प होना चाहिए, पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो शास्त्र में यह ज्ञान दिया है कि सजल निर्जल, सजल और सफल, उसके आगे सारे हरे कृष्णा आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रिंसिपल रख सकते हैं आप, जितना जरूरी है उतना ही लेना है। एकादशी दुप्पट खासी नहीं होना चाहिए। अभी एकादशी में जो है केवल शरीर और आत्मा को जीवन चलाने के लिए कितना आवश्यक है उतना ही एकादशी का भोग प्रसाद जो है वो लेना चाहिए, चाहे वो खिचड़ी हो चाहे वो कुछ भी हो। जितना हो सके आरोग्य को देखते हुए हमारा जो शास्त्र है धर्मशास्त्र है वो पूरा आरोग्य के साथ जुड़ा हुआ है। सब शास्त्र देखिए आप, चतुर्मास से जहाँ पर वातावरण में नमी होती है यानी कि ह्यूमिडिटी होती है उसमें अग्नि मानद्य होता है, उसमें पेट में पचन शक्ति कम हो जाती है। इसलिए हमारे सारे व्रत वैकल्य जितने भी है वो ये चतुर्मास में दिए गए हैं। कई प्रकार के उत्सव आते हैं, कई प्रकार के उपवास होते हैं, किसी का ये उपवास है कि नागपंचमी का उपवास है, किसी का और। सारे उपवास इस चार महीने में क्यों है, क्योंकि चार महीने में जब घनघोर वर्षा होती है तो हमारा पचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। इस समय पर तली हुई वस्तु और बहुत भारी वस्तु और मीठी वस्तु बार बार और अनेक प्रकार की सब्जियां मिक्स करके, अनेक प्रकार धान्य मिक्स करके, रात के समय कठोर, ये सब नहीं खाना चाहिए। ये सब आरोग्य और धर्म को हमारे गुरुजनों ने हमको ये मिलाप बना के दिया है। उसी प्रकार से एकादशी का व्रत जो है वो भी आरोग्य से जुड़ा हुआ है। 15 दिन में एक बार शरीर को विश्रांति देना बहुत जरूरी है ताकि शरीर जो उसके अंदर विषैले पदार्थ निर्माण हो गए उसको निचरा कर सकते हैं, उसको बाहर डाल सकते हैं, शरीर को समय मिलेगा। जैसे हम अगर हम आज बोलेंगे आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज घर साफ करना है और कैंटीन से खाना मंगाएंगे, तो उससे क्या होता है आपको समय बचाते हैं और फिर घर की साफ सफाई करते हैं। रविवार के दिन आप छुट्टी का दिन है, उसी तरह से शरीर भी जब आप बाहर से भी अन्न ग्रहण करने का काम बंद कर देते हैं और हल्का फुल्का फल खाते हैं तो शरीर को बहुत समय मिलता है, तो जितने विषैले पदार्थ अलग अलग अवयवों में छुपे हुए हैं उनको शरीर साफ कर देता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एकादशी में अगर हम फल के आगे भी कुछ खिचड़ी वगैरह कुछ खाएंगे उतना ही खाना चाहिए जितना आवश्यक है, उतना ही खाना चाहिए जितना खाने के बाद सुस्ती नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, उतना ही खाना चाहिए जिसके खाने के बाद भी आप सतर्क रहेंगे और भगवान का कीर्तन श्रवण करने के लिए उत्सुक रहेंगे, जागरूक रहेंगे और आपका मन लगेगा। ये इसमें प्रिंसिपल है। हाँ कोई भी चीज़ करने में रूप गोस्वामी ने एक तत्व दिया है, स्मर्तव्यम सततम कृष्णम विस्मर्तव्यम न जातुचित। ये अगर आप मन में आपका विचार चल रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, हमेशा सदैव भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो। और दूसरा क्या दिया है, कभी भी भगवान का विस्मरण मत करो, डोंट फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। आपका एकादशी का व्रत भी इसी तत्वों पर आधारित होना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो तत्व मैंने बताया है, विस्मर्तव्यम न जातुचित, स्मर्तव्यम सततम कृष्ण, ये एक परम वैराग्य का लक्षण है। परम शरणागत जो व्यक्ति है उसका लक्षण है कि वो शरणागत केवल गृहस्थी आश्रम छोड़ के और धन दौलत छोड़ के और भोग छोड़ के नहीं होता है। शरणागति व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो परम भगवान के स्मरण में होता है, उसको परम शरणागत माना गया है, परम विरक्त माना गया है, दुनिया से विरक्त और भगवान से आसक्त। तो अगर आपके अन्न ग्रहण में, आपके जो भोजन प्रसाद ग्रहण में ये तत्व है कि आपको कृष्ण का स्मरण करना है और आपको एकादशी के दिन किसी भी कीमत पर भगवान को भूलना नहीं है, तो आप जो भी खाएंगे वो परिपूर्ण है। अल्टीमेटली भगवान जो है, आप एकादशी में पकौड़े खा रहे हो, आलू के, कुट्टू के आटे के लड्डू खा रहे हो, कि खिचड़ी खा रहे हो, कि फल खा रहे हो, कि निर्जला उपवास कर रहे हो, ये भगवान देखते नहीं है। भगवान एकादशी करने वाले का भाव देखते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर हम निर्जला उपवास करते हैं तो हम फल खाने वाले लोगों के और तुच्छ रूप में देखते हैं। अरे कैसे पतित लोग हो आप, कैसे भोगी लोग हो, देखो मैं देखो निर्जला उपवास कर रहा हूँ, आप लोग इतना फल खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, ऐसे मन में अहंकार उत्पन्न होता है। तो आई वहीं आपका एकादशी का उपवास फेल हो जाता है। इसलिए जो नम्रता बनाए रखें जो हमारे लिए आवश्यक है, हाँ, जैसे कोई आपके, आप में से कोई डायबिटीज़ के मरीज हो सकते हैं, कोई दिल के मरीज हो सकते हैं, कोई और किसी भयंकर बीमारी के, कैंसर के मरीज हो सकते हैं, वो शायद उपवास नहीं कर पा सकते, उनके लिए आवश्यक है इलाज के रूप में, दवा के रूप में कुछ खाना पीना, तो वो भी सही है अगर आप भगवान के विषय में, भगवान की स्मृति में बने हो। आपके शरीर की स्थिति आपके हाथ में नहीं हो सकती है शायद, लेकिन भगवान की याद करना कि नहीं करना ये आपके हाथ में। इसलिए गुरु महाराज ने एक बार, गुरु महाराज को नमोनिया हो गया था, वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, तो वो इतने कमज़ोर थे, इतने कमज़ोर थे कि उस समय गौर पूर्णिमा आई, हाँ भगलों को याद होगा, महाराज जी हमारे डिलक्स फाइव नंबर में एडमिट हो गए थे। तो फिर बहुत विवाद हुआ कि महाराज को अभी इस अवस्था में उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि पिछले 40 साल से मैंने कभी भी एकादशी का अपना गौर पूर्णिमा का निर्जला उपवास कभी त्याग नहीं किया है, और पहली बार चर्चा हो रही है, बहुत चर्चा हुई, हमने कहा नहीं आपको निर्जला उपवास नहीं करना चाहिए, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जनरल निवास प्रभु को फ़ोन करके पूछो, भक्ति विद्या पूर्ण महाराज को फ़ोन करके पूछो, अगर वो कहेंगे उनके आदेश के अनुसार मैं चलूँगा। तो सब लोग ध्यान से सुनिए, ये सारे तत्व जो है वो तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो भक्ति विद्या पूर्ण महाराज ने फिर फ़ोन पर जवाब दिया कि अगर बीमार व्यक्ति है और वैद्य यानी डॉक्टर के आदेश पर उसको अन्न भी खाना पड़ता है तो उसका एकादशी उपवास भंग नहीं होता है। उस व्यक्ति को भगवान का स्मरण बनाए रखना चाहिए और केवल डॉक्टर के आदेश के अनुसार ही जितना अन्न ग्रहण करना है उतना ग्रहण करना है। दूसरी, अगर किसी को गुरु की आज्ञा है तो वो एकादशी में अन्न खा सकता है। तो ये भावना बहुत जरूरी है, किसी की सेहत खराब है और डॉक्टर का आदेश है और किसी की गुरु की आज्ञा है, तो एकादशी व्रत अगर आप वैसे बाहरी दृष्टि से नहीं भी करेंगे फिर भी आप एकादशी व्रत कर रहे हैं, क्योंकि एकादशी व्रत का जो मूल अंतरंग अंग है वो भगवान की स्मृति है, भगवान की सेवा है, भगवान के विषय में श्रवण श्रवण और कीर्तन करना है, भगवान के पास रहना है। लेकिन अगर हमको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, अच्छा होगा बीमार पड़ गया मैं, एकादशी टल गई हमारी, गुरु जी भी बोल रहे हैं, वैद्य भी बोल रहे हैं, डॉक्टर भी बोल रहे हैं, चलो खा लो, क्योंकि हमारे अंदर का भाव भगवान जानते हैं, हमको उस एक विशेष स्थिति का सहारा लेकर अपने भोग प्रवृत्ति को संतुष्ट नहीं करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल द थिंग इज कॉन्शियसनेस, भाव, जिसको पांडुरंग भगवान, श्री कृष्ण भगवान देखते रहते हैं, और वो केवल हम खुद को फंसा सकते हैं लेकिन पांडुरंग को फंसा नहीं सकते, वी कैन नॉट चीट द लॉर्ड। तो इसलिए निर्जल सजल और सफल, हाँ, एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फलप्रदम, एक ऐसा व्रत है राधा रानी बताती है कि इसमें सारे आपके काम यानी जो भगवान के विषय में आपकी इच्छा है वो सारे एकादशी व्रत पूर्ण कर देते हैं। एकादशी का एक व्रत करने से सारे व्रत करने का लाभ मिलता है, और सारे व्रत ना भी करेंगे और एकादशी व्रत करेंगे तो सब परिपूर्ण है, और सारे व्रत करेंगे सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार रविवार के और एकादशी व्रत नहीं करेंगे तो वो सब बेकार है। क्योंकि अल्टीमेटली हमको कोई भी व्रत जो है भौतिक फल के लिए प्राप्त नहीं करना है, भौतिक फल को प्राप्त करने के लिए नहीं करना है, हमको सारे व्रत का एक ही परिणाम है, एक ही लक्ष्य है, वो भगवान की संतुष्टि है। और व्रत का व्याख्या क्या है, शरीर के लिए कुछ असुविधा, सम इनकन्वीनियंस, शरीर के लिए असुविधा एक वाक्य हो गया, एक एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, स्वेच्छा से शरीर के लिए असुविधा विरार चर्च गया, ट्रेन में भी होती है, लेकिन वो स्वेच्छा से नहीं करते लोग, जबरदस्ती करते हैं, मजबूरी से करते हैं, लेकिन व्रत जो है वो स्वेच्छा से होता है। तो स्वेच्छा से प्राप्त स्वीकार किया हुआ शरीर की कुछ असुविधा, और तीसरा पॉइंट क्या है, भगवान की संतुष्टि के लिए, मुझे अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए, मेरा बच्चा SSC में अच्छे मार्क मिलने चाहिए, उसको अच्छे एडमिशन मिलने चाहिए, इसलिए माँ व्रत करती है, हाँ शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत करती है। उस व्रत को व्रत नहीं कहा जाता है, व्रत की मूल व्याख्या ही यह है जो भगवान के संतुष्टि के लिए की जाती है। जब ये तीनों पॉइंट पूरे होते हैं तो आपका व्रत व्रत की गिनती में आ जाता है, तब उसको भगवान उस तरह से देखते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शरीर की असुविधाएं, हम लोग को चपाती रोटी सब खाने की बहुत इच्छा है लेकिन हम नहीं खा रहे, भूख भी बहुत लग रही है लेकिन उनको दुर्लक्ष कर रहे हैं, हम एकादशी का प्रसाद खा रहे हैं और स्वेच्छा से कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि मम्मी ने बुलाया है, पति ने बुलाया है, पत्नी ने बुलाया है और गुरु ने बुलाया है, फिर नहीं, हमको अभी समझ में आया कि करना ज़रूरी है, आत्मा के उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है, तो स्वेच्छा से कर रहे हैं। और हर बार कुछ भी व्रत करते हुए जो भी शरीर को असुविधा हो रही है आपको, उस समय आपको भगवान की संतुष्टि के लिए मैं कर रहा हूँ ये भावना होनी चाहिए। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस इनकन्वीनियंस फॉर द प्रेजर ऑफ द लॉर्ड। रात को माता जब उठती है बच्चे के लिए, उसको बुखार आया है, दस्त हो रहे हैं, तो बच्चे के प्रेम की वजह से करती हो और किसी की वजह से नहीं करती। हमको भी एकादशी का व्रत भगवान के प्रेम के वजह से करना चाहिए, टू प्लीज द लॉर्ड, उनके प्रेम के कारण हमको करना चाहिए। ये भाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर आप निर्जला करो, सफला करो, सजला करो और कुछ खा के करो, लेकिन आपका भाव जो है वो सही जगह पे होना चाहिए, उसी भाव को अल्टीमेटली भगवान स्वीकार करते हैं, बाकी सब कुछ बाह्य है, ज़रूरी है वो भी, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना भगवान का स्मरण इम्पोर्टेंट है, भगवान का प्रसन्नता इम्पोर्टेंट है। हमारे ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं, माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन कोरी। ये माधव तिथि यानी भगवान के जो उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, रथ यात्रा, हाँ, और बहुत सारे उपवास, संतों के जन्मदिवस, नरसिंह भगवान का जन्मदिवस, प्रभु राम का जन्मदिवस, कृष्ण का जन्मदिवस, हम सब इन उत्सवों को माधव तिथि मानते हैं। और इन माधव तिथि में हम कुछ ना कुछ व्रत रखते हैं कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसे करेंगे, इतना जप करेंगे। तो वो क्या कहते हैं, माधव तिथि का महात्म्य क्या है, भक्ति जननी, आपके अंदर जो भक्ति है उसको वो बढ़ाती है, वो भक्ति की माता है। मूल भक्ति की माता कौन है, राधा रानी, भगवान की अंतरंगा शक्ति जो भक्ति का सार है, भक्ति का स्रोत है, भक्ति का उगम है, भक्ति का भंडार है वो, और उनकी तरफ से हमको भक्ति का बीज प्राप्त होता है, उस बीज को वृद्धि करके वृक्ष बनाना है तो माधव तिथि उसके लिए बहुत अनुकूल है। इसलिए वो कहते हैं जतन पालन कोरी, बहुत प्रयत्नपूर्वक मैं उसका पालन करता हूँ, कभी भूलता नहीं हूँ। अगर भूलने का समय है, अगर विदेश गया हूँ किसी कारण, वहाँ पर कोई भक्ति भक्ति का संग वंग नहीं मिलता है, वहाँ पर भी रिमाइंडर रखता हूँ, किसी को फ़ोन करने को बोलता हूँ, किसी को SMS, WhatsApp, किसी को फ़ोन करके या Facebook पे रिमाइंडर करने को बोलता हूँ। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, सब WhatsApp, सोशल मीडिया पे एकादशी के पहले दिन एक डालते हैं मैसेज, कल एकादशी है, कल अन्न ग्रहण नहीं करना है, भगवान का ध्यान करना है। तो अगर आप कहीं भूल भी गए होंगे, बिजी होंगे, तो भी आपको याद आती है, अरे हाँ कल एकादशी। इसका मतलब है जतन, जतन यानी आप प्रयत्न कर रहे हैं, सिंसियर हैं, प्रामाणिक हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें भूले नहीं, 26 एकादशी में एक भी व्रत हम नहीं भूले। और कभी अगर गलती से हमारा व्रत अगर टूट जाता है, समझो किसी ने कुछ दे दिया, झट से खा लिया, किसी का हैप्पी बर्थडे था, तुरंत केक का पीस ला के दिया, आप भूल गए, झट से मुंह में डाल दिया उसको प्रसन्न करने के लिए, और एकादशी आपकी भंग हो गई, तो फिर आती है पांडव निर्जला एकादशी, तो गर्मी के मौसम में आती है। उस दिन अगर निर्जला उपवास करेंगे तो आपके जितनी गलती से एकादशी भंग हो गई है वो सारे एकादशी परिपूर्ण हो जाती है। तो हर चीज़ का उपाय भगवान ने दिया है, लेकिन वो प्रामाणिक लोगों के लिए है, चीटर लोगों के लिए नहीं है। जो लोग प्रामाणिक हैं, सिंसियर हैं, सत्यवादी हैं, जो जानबूझकर भोग लेना नहीं चाहते हैं, भोग लेने का कारण ढूंढते नहीं हैं, रीज़न ढूंढते नहीं हैं, उनके लिए भगवान ने हर प्रकार का व्यवस्था बनकर रखा है। लेकिन एकादशी का व्रत हम जिस प्रकार से करते हैं उसमें कतई तौर पर हमको गर्व नहीं होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग याद रखना। और कभी किसको बताते मत जाना कि मैं हर एकादशी निर्जला करता हूँ, मैं अमुक एकादशी निर्जला करता हूँ, मैं महीने में साल में इतनी एकादशी तो कुछ खाता नहीं हूँ। हमारा व्रत जो है वो पब्लिक को डिक्लेयर करने के लिए नहीं होता है, हमारा व्रत जो है वो हमारे भगवान के बीच में होता है। इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि कुछ संत लोग कार्तिक में कुछ सैकड़ों माला जप करने का व्रत लेते हैं, एकांत जगह पर रहते हैं और इतनी इतनी माला करते हैं। लेकिन हमने सच्चिदानंद स्वामी और कोई ऐसे स्वामी सुना हुआ है कि आपका व्रत क्या है ये जनता में कभी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। आपका व्रत आपके गुरु और आपके भगवान के बीच में होता है, जनता को इम्प्रेस करने के लिए, गर्व को प्राप्त करने के लिए नहीं होता है। और व्रत कभी भी हमारे अहंकार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, व्रत करने से अहंकार बढ़ना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। आप व्रत करते ही क्यों हैं, इंद्रियों को कष्ट क्यों दे रहे हैं, ताकि हमारा अहंकार नष्ट हो। क्यों अहंकार नष्ट हो, क्योंकि अहंकार ही हमारे और भगवान से जुदा होने का कारण है। हम यहाँ पर क्यों दुख भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु के इर्जारा क्यों डाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास अहंकार है। हम भगवान को छोड़कर अलग भोग लेना चाहते हैं, अलग स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, ये अहंकार सबकी जड़ है। इसलिए व्रत भी करते तो उसको नष्ट करने के लिए करते हैं, भगवान के और पास जाने के लिए, हमारे बीच में जो अहंकार की दीवार है उसको हटाकर भगवान के और करीब जाना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, उसको एक दिन नष्ट करना चाहते हैं। तो वही व्रत अगर आपके अहंकार का कारण बनेगा, मतलब समवेयर यू आर मिसिंग अ पॉइंट, आपको सब कुछ लक्ष्य में और जानकारी में कुछ गलती है, समझने में कहीं गड़बड़ हो गई मूल तत्वों के आधार पर। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको ये सब बताना पर्याप्त है, समर्पक है, क्योंकि आज एकादशी का दिन है और बहुत सुंदर एकादशी है। जिस एकादशी को विट्ठल भगवान गोप भाव में रहते हैं, गाय चराने के भाव में रहते हैं, वृंदावन के भाव में रहते हैं, ऐश्वर्य भाव को छोड़ देते हैं, हाँ, किसी के सखा बनते हैं, किसी के प्रियकर बनते हैं, किसी के दोस्त बनते हैं, किसी का माता बनते हैं, किसी के पिता बनते हैं, लेकिन भगवत्ता का भाव जो है वो आज छोड़ देते हैं। इसलिए सब लोग यहाँ पर दौड़ के आते हैं, कम से कम शिखर का दर्शन क्यों ना करें, हो सके दर्शन भी कर लेंगे, मुख दर्शन कर लेंगे, क्योंकि वो भाव में भगवत खुद भगवत्ता भी छोड़ देते हैं, भगवान होने का जो स्थिति है उसको भी त्याग कर देते हैं। यही वृंदावन धाम का महात्म्य है। वृंदावन धाम में परम भगवान जो है भगवान होने का पद को छोड़कर एक सामान्य व्यक्ति बनकर आते हैं। तो आज हमारे विट्ठल भगवान एक सामान्य मित्र के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं। दर्शन नहीं मिलेगा तो भी उनका चिंतन कीजिए आप। देखिए भगवान कितने, भगवान भी कुछ कुछ त्याग करते रहते हैं हमेशा अपने भक्त के लिए, अपने भक्तों को निरामय आनंद देने के लिए। जो बाधा आती है कि भगवान भगवान है, समझो आप जानते हैं कि व्यक्ति बहुत महान है, उसे कंधे में आप हाथ डाल सकते नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को इच्छा है कि लोग मेरे कंधे पर हाथ डालें, तो क्या करता है, अपना ऐश्वर्य भाव छोड़ के आ जाता है। लोग उनको जानते ही नहीं कि ये बड़ा आदमी है, फिर लोग कंधे पे हाथ क्या, ग्वाल बाल तो कंधे पे चढ़ जाते हैं, कंधे पे चढ़ के फिर फल तोड़ते हैं, वृंदावन के फलों का आस्वाद लेते हैं, भगवान को आदेश देते हैं, अरे भगवान यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया वृक्ष वन है, वहाँ पर बड़े ताल वनों का खुशबू आ रही है, बहुत दिनों से हमारा दिल ललचा रहा है, हमारी इंद्रियां ललचा रही है, लेकिन वहाँ पर एक धेनुकासुर नाम का भयंकर गधा राक्षस निवास करता है और वो किसी को आने देता नहीं है और खुद ही सारे ताल फलों का भोग लेता है। कुछ करो इंतजाम हमारे लिए, हाँ, हमारे नाक और हमारी जिह्वा ललचा रही है। तो मानो भगवान को आदेश दे रहे हैं और भगवान भी कहते हैं हाँ ठीक है हम चलेंगे आज वहाँ पर। तो बलराम जी भाई कहते हैं चलो चलते हैं, और फिर सब लोग वहाँ से चलने लगते हैं। रास्ते में बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान जो चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर चर्चा है। कृष्ण भगवान सब पेड़ों को देखते हैं और पेड़ों का गौरव करते हैं, देखो कि कितने महान पेड़ है ये, देखो जितने अधिक फल है उतने झुके हुए हैं, हाँ हमेशा हमको हमारे पास जितनी प्राप्तियाँ हैं वो होने से गर्व नहीं करना चाहिए। देखो पेड़ के पास इतने फल है, इतने फलों पर कितना गर्व होना चाहिए, लेकिन वो कैसे हैं, जितने फल है उतने अधिक जमीन की ओर झुके हैं। और देखो बलराम भैया देखो आपको वंदन करने के लिए झुक रहे हैं, ये सारे जितने भी पेड़ हैं आपको वंदन कर रहे हैं, झुक झुक के वंदन कर रहे हैं, आपको फल अर्पण करने की अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे भगवान कृष्ण स्वयं वृक्षों का गुणगान करते हैं और फिर वो तालवन में प्रवेश करते हैं, और तालवन में प्रवेश करके बलराम भैया ताल के पेड़ को हिलाते हैं, बहुत सारे परिपक्व ताल के फल नीचे गिर जाते हैं, सब लोग झपट पड़ते खाने लगते हैं। उतने में भयंकर धेनुकासुर जो है वो पहाड़ समान है, गधे के शरीर में है, वो आक्रमण करता है बहुत गर्जना करते हुए। और बलराम भैया उसको पीछे के पैर पकड़ के गोल घुमा के ऐसे फेंकते हैं कि वो जाकर एक ताल वृक्ष के शिख पर जाकर ऊपर के हिस्से में जाकर गिर जाता है, जिससे वो ताल पेड़ गिर जाता है दूसरे ताल पेड़ पर, दूसरा ताल पेड़ तीसरे ताल पेड़ गिर जाता है। इस तरह से सारे ताल के पेड़ लाइन से जमीन पर गिर जाते हैं। हर बार उस ताल के पेड़ को हिला के उसके फलों को नीचे गिराने की आवश्यकता नहीं है। सारे ताल के पेड़ जैसे पत्ते का बंगला होता है, ऐसे एक 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 करके धीरे गिर जाते हैं और सारे जो सुंदर सुंदर फल है वो जमीन के ऊपर आ जाते हैं और सब ग्वाल बाल उसका आनंद लेते हैं। उसके बाद जो गधा धनुकासुर था उसके जितने साथी थे वो भी उतने ही भयंकर थे, अलग रंग के थे, हरे पीले नीले रंग के थे। वो गर्जना करते हुए आक्रमण करते हैं, कृष्ण बलराम मिलकर दोनों सभी राक्षसों को खत्म कर देते हैं और वो तालवन जो है धनुकार उसके टीम से मुक्त हो जाता है और सभी ग्वाल बालों को हमेशा के लिए तालवनों का ताल फलों का आनंद देने के लिए मुक्त हो जाता है। ये कथा मैंने आज आपको क्यों बताई क्योंकि तालवन में धेनुकासुर का वध करने के बाद ही कृष्ण भगवान पंडरपुर आए हैं, ऐसे शास्त्र में वर्णन आता है। इसलिए कथा सुनने का आज बहुत महत्व था। तो तालवन में धेनुकासुर का वध करने के बाद श्री कृष्ण भगवान गाय और बछड़ों को लेकर फिर रुक्मिणी को ढूंढने के बहाने फिर यहाँ पर आए हैं। वो तो रुक्मिणी को ढूंढने का बहाना एक था, एक पुंडलिक को दर्शन देने का बहाना था। तो मैं ये क्या कह रहा था कि भगवान भी अपनी महत्ता, भगवत्ता, ऐश्वर्य को अपने भक्तों के प्रेम के लिए छोड़ देते हैं। तो हमको ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए जो अहंकार है उसको छोड़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए और उसके लिए एक सुंदर व्रत है एकादशी का। क्योंकि जब इंद्रियों को हम लोग भोग देते हैं तो हमारे अहंकार की वृद्धि होती है। जब इंद्रियों को भोग से हम त्याग करवाते हैं तो अहंकार धीरे धीरे कम हो जाता है। जब सांप के फन में विष होता है तो वो बहुत कड़क होता है और बहुत मोटा होता है। जब विष निकलता है तो फिर वो ढीला हो जाता है, जैसे कालिया का हुआ था। भगवान ने अपने पैर मार मार कर सारे विष और अग्नि की ज्वाला को उससे मुक्त करा दिया। सारे फनों में से जब विष मुक्त हुआ तो जो अहंकार था वो अपने आप नष्ट हो गया और स्वतः जो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम वो जो नित्य स्पर भगवान की भावना है वो जागृत हो गई, उसकी अहंकार नष्ट होते ही। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये एकादशी का व्रत हमको करना बहुत जरूरी है। एकादशीम प्रथम नाम सर्व काम फलप्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रही विष्णु प्रेरण कारणम। इसका मतलब यह है कि सब लोग भक्त लोग जो हैं उनका ये कर्तव्य है कि नियमित रूप से एकादशी पालन करें, क्योंकि इससे प्रेरण कारणम यानी भगवान की प्रीति उत्पन्न होती है, विष्णु प्रीति कारणम। तुकाराम महाराज कहते हैं कि अगर आपको एकादशी का व्रत अच्छा लगता नहीं है, ऐसे हमारे बहुत मित्र लोग हैं जो दशमी की रात को बहुत दुखी रहते हैं अभी कल एकादशी है, 24 घंटा थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, जलेबी खाने को नहीं मिलेगी, पकौड़ा खाने को नहीं मिलेगा, समोसा खाने को नहीं मिलेगा, रोटी सब्जी खाने को नहीं मिलेगी, पराठा नहीं मिलेगा। वो कहते हैं जो एकादशी ना पसंद करता है, ना वड़े एकादशी जाला जयाला, उसका नरकवास निश्चित है, ऐसे बोलते हैं दुर्भाग्य से क्या करें, बैड लक। और ऐसे व्यक्ति को नरक भी स्वीकारने में तैयार नहीं रहता है, ऐसा कहा गया है, नरक भी भयभीत रहता है उससे। और जो एकादशी बड़े प्रेम से, दिल से, इच्छा से, स्वेच्छा से, उत्साह से पालन करता है, उसका इंतजार करता है, वो तुकाराम महाराज कहते हैं कि पिछले जन्मों में इतना पुण्य राशि इकट्ठा किया उसने, इसके फल स्वरूप उसके मन में इतना एकादशी के प्रति उत्साह निर्माण हुआ है। इट्स अ साइन ऑफ हैविंग टन्स ऑफ पायस एक्टिविटीज कलेक्टेड इन पास्ट लाइफ टाइम्स दैट यू हैव एंथुसियाज्म टू फॉलो एकादशी व्रत। और वो कहते हैं एकादशी पालन करने से वैकुंठ प्राप्ति निश्चित हो जाती है। तो इस तरह से हमारा एकादशी का महात्म्य यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन पंडरपुर में विट्ठल भगवान की जो उत्सव मूर्ति है वो रथ में आरूढ़ हो जाती है। आज रथ यात्रा होती है पंडरपुर में और वो पंडरपुर की रथ यात्रा में कहा गया है रथस्थम विठ्ठलम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति रथ में बैठे हुए विठ्ठल भगवान के उत्सव मूर्ति का दर्शन करता है और धूमधाम से कीर्तन में नृत्य करता है उसको पुनर्जन्म का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, न पुनर्जन्म विद्यते। तो वो जो आज रथ यात्रा शुरू होती है वो 5 दिन चलती है, और वो गोपालपुर नाम का यहाँ पर एक गांव है, 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जहाँ पर जनाबाई की लीला है, जहाँ पर जनाबाई ने जनाबाई के लिए विट्ठल भगवान ने अपने हाथ से दड़न, क्या कहते हैं उसको, चक्की पीसी थी। वहाँ पर पूर्णिमा के दिन गोपाल काला होता है, दही हंडी फूटती है, जितने लोग यहाँ जमा हो गए पूर्णिमा के दिन वहाँ पर जमा होते हैं और दही हंडी का प्रसाद प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। उस दिन भगवान को माखन का भोग लगता है, दही हंडी फूट जाती है और सब भक्तों को माखन का प्रसाद वितरित किया जाता है। तो ऐसे एकादशी का व्रत का महात्म्य इस प्रकार से समाप्त होता है। सब लोगों को हम शुभकामना देते हैं कि आप लोग एकादशी का व्रत बड़े प्रेम से, उत्साह से, भक्ति भाव से संपन्न करें और उतना ही प्रसाद लें जितना आवश्यक है, और दिन भर अपनी इंद्रियों को काबू में रखें, बेफजूल की बातें मत करें, बेफजूल की बातें मत सुनें, और मन को हमेशा भगवान की स्मृति में, मुख को हमेशा भगवान के नाम जप में मग्न रखें। हरे कृष्णा। साथ साथ में हमने सोचा कि कुछ रुक्मिणी का भी गुणानुवाद होना चाहिए आज के दिन, क्योंकि पंडरपुर जी के विट्ठल महाराज जी का बहुत सारा गुणगान बहुत लोगों ने किया है, तो रुक्मिणी का इतिहास भी जानना जरूरी है, क्योंकि रुक्मिणी यहाँ पर वो भी परम निवास किए हुए बैठी हुई है। हाँ, जैसे भगवान के पहले रुक्मिणी आई तपस्या करने के लिए, तो भगवान उसको ढूंढे बाद में आए, भगवान भी नहीं गए और रुक्मिणी भी नहीं गई, दोनों यहीं निवास कर रहे हैं। और एक विशेष बात मुझे पढ़ाई में समझ में आई कि विश्व में जितने भी भगवान हैं वो कुछ कुछ स्वयं स्फूर्त हैं, जिनकी प्रतिष्ठापना नहीं होती है, और बाकी सारे भगवान की प्रतिष्ठापना होती है। मूर्ति बनाई जाती है, उसमें प्राण नहीं होते हैं, फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन विट्ठल भगवान की जो मूर्ति है वो बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, स्वयं भगवान यहाँ पर आए हैं और स्वयं मूर्ति रूप होकर यहाँ पर विराजमान हो गए। तुकाराम महाराज कहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि ये प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति है तो आपके लिए नरक निश्चित है, अगर आप सोचते हो कि ये शिला है तो भी नरक निश्चित है। तो ये बात भी बहुत एक विशेष विट्ठल भगवान की है कि वो बिना प्रतिष्ठापित स्वयं स्फूर्त भगवान की मूर्ति। तो रुक्मिणी का इतिहास ऐसा है कि रुक्मिणी जी भीष्मक राजा की पुत्री थी, उसको 5 भाई थे, सबसे बड़े रुक्मी, दूसरे भाई रुक्मरथ, तीसरा रुक्मबाहु, चौथा रुक्मेश और 5वां रुक्ममाली। ये 5ों भाई बड़े पराक्रमी थे और भीष्मक राजा बड़े धर्मशील थे। ये भीष्मक राजा का संबंध और उल्लेख पहले भी आता है, जब ही पुतना ने राजा रानी और चंद्रावली का विंध्याचल के घर से हरण किया था, विंध्य पर्वत को तपस्या करने के बाद में 2 ऐसी कन्या प्राप्त हुई थी जिनका पति जो होगा, जो उनका वर होगा, वो वर जो है वो शिव जी को भी युद्ध में परास्त कर सकता है। समझ में आया आपको? क्योंकि शंकर भगवान ने तपस्या करके, सॉरी हिमालय ने तपस्या करके पार्वती को पुत्री के रूप में प्राप्त कर लिया था, वो अन्नपूर्णा है, वहाँ पर इतना समृद्धि हो गई उसके जन्म होने के बाद। तो विंध्य ने भी तपस्या किया क्योंकि उस पार्वती का विवाह शंकर से हुआ, और शंकर तो महादेव हैं, सब देवताओं के महादेव है वो। तो विंध्य को लगा कि मुझे भी ऐसी कन्या होनी चाहिए जिसका पति शंकर से भी श्रेष्ठ होगा, युद्ध में शंकर को भी परास्त करेगा। तो विंध्याचल को 2 कन्याएं हुई, चंद्रावली और राधा रानी। और कंस को पता चला कि ये 2 कन्या जो प्राप्त हुई है उनका फल ये है कि यो जो पति उनका होगा वो शंकर से भी अधिक बलवान हो जाएगा, तो उनसे विवाह करने के लिए उन्होंने, कंस ने पुतना को भेज दिया कि इसका हरण करो। तो उतना आई और इन दोनों कन्या को उठा के आकाश में उड़ गई। वो थी ना खेसरी, खेसरी यानी कि वो तिनके के ऊपर अभिमंत्रित करके हवा में उड़ सकती है। दोनों कन्या को दोनों हाथ में लेकर वो आकाश में उड़ गई, तिनके को विमान बनाकर। फिर विंध्य ने ब्राह्मणों को बुलाकर, संतों को बुलाकर तपस्या और यज्ञ आरंभ किया, अनुष्ठान आरंभ किया। उसके प्रभाव से पुतना के शरीर में अग्नि निर्माण हो गया, आंच निर्माण हो गई अग्नि की, उस असह्य हो गई। तो उसने एक कन्या को छोड़ दिया, वो गिर गई। कहाँ गिर गई? वो विदर्भ में गिर गई, जिसका नाम था चंद्रावली, और वो भीष्मक राजा के राज्य में गिरी और भीष्मक राजा को प्राप्त हुई। और भीष्मक राजा ने 5 साल तक उसका लालन पालन किया। फिर ब्रज से पूर्णमासी देवी आई और उसने चंद्रावली को लेकर वो ब्रज में चली गई, और दूसरी कन्या को त्याग दिया उन्होंने, पुतना देवी ने, जब तब तक वो ब्रज के पास पहुंची थी, गोकुल में त्याग दिया उसको, जलने की वजह से छोड़ दिया उसको, तो वो वृषभानु महाराज के सरोवर में गिरी जमुना जी में, और राधाष्टमी के दिन राधा रानी का प्राप्ति हुई। जन्म नहीं हुआ, जन्म तो पहले हो चुका था, लेकिन वृषभानु महाराज और कीर्ति माता जी को राधा अष्टमी के दिन राजा रानी का प्राप्ति हुआ। ब्रह्मा जी ने फिर अपने ध्वनि से उनको उपदेश किया कि आपने तपस्या किया था भगवान की अंतरंगा शक्ति को प्राप्त करने के लिए, इसलिए ये कन्या भगवान की अंतरंगा शक्ति है और आपके लिए पुत्री के रूप में प्रस्तुत है, आप बड़े आनंद से उसको घर पर लेके जाइए। तो वृषभानु महाराज फिर कन्या को ग्रहण करके घर पर लेके आते हैं। तो ये संपर्क उल्लेख जो है भीष्मक राजा का शास्त्र में आता है कि भीष्मक राजा ने विदर्भ में चंद्रावली का लालन पालन भी किया है। यथावकाश उनको कन्या प्राप्त होती है रुक्मिणी देवी, इतनी सुंदर थी वो, ऐसे कहते हैं उनका सौंदर्य को देखने के लिए देवता लोग अपने विमान पर बैठकर पृथ्वी में मंडराते थे भीष्मक राजा के महल के ऊपर, एक नज़र रुक्मिणी देवी की मिल जाए, इतनी सुंदर थी वो। तो रुक्मिणी देवी बचपन से संतों के संग में थी, क्योंकि भीष्मक राजा धर्मशील थे, तो बचपन से घर में संत लोग आया जाया करते थे, आश्रय लिया करते थे, उनकी सेवा होती थी और वो कथा भी किया करते थे। तो हमेशा अलग अलग संतों के मुख से उन्होंने कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण किया था। भगवान तभी गोकुल में थे, गोकुल से वृंदावन में गए और चमत्कारी लीला किया उन्होंने, आनंददायी लीला किया, उसका वर्णन वो सुनते आ रही थी। केवल श्रवण करने मात्र से उसने भगवान के ऊपर प्रीति उत्पन्न कर ली, ओनली बाय हियरिंग। जरूरी नहीं कि हमें हमेशा हमारे गुरुजन, हमारे संतजन या भगवान का संग मिलना ही चाहिए, शरीर का संग, उनके बारे में श्रवण करके भी उनके विषय में प्रीति हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। रुक्मिणी देवी इसका एक मूर्तिमान उदाहरण है। केवल भगवान के बारे में सुनकर, कभी भी एक बार भी दर्शन नहीं किया, केवल सुनकर अपने दिल को उनको अर्पण कर दिया, उनको वर लिया उन्होंने। लेकिन रुक्मी जो था वो शिशुपाल का मित्र था, शिशुपाल बहुत बड़ा वीर था वैसे, लेकिन जब जन्म हुआ उसका तो जन्म से ही वो भगवान के विषय में गाली बकने लगा। अभी बोलने को भी नहीं आ रहा है उसको, तब से जब जबान खोली तब से भगवान को गाली दे रहा है, वो भगवान की निंदा कर रहा है, इतना भयंकर था उसका जन्म। उसको तीन सर थे और तीन पैर थे शिशुपाल को। तो शिशुपाल की माँ जो थी वो कुंती की चचेरी बहन थी, बड़ी दुखी हो गई। अब किसी को अगर आपके बीच में अगर तीन सर वाला तीन पैर वाला पुत्र होगा तो आपको खुशी बनाएंगे क्या, आप क्या करेंगे? तब कृष्ण भगवान ने कहा कि ये जिसकी गोद में जाएगा आप सबके गोद में उसको रखते जाना, जिसकी गोद में जाते ही उसके दो सर और एक पैर खत्म हो जाएगा और वो पूर्ववत मतलब नॉर्मल हो जाएगा, दो दो पैर वाला और एक सर वाला हो जाएगा, सामान्य रूप में आ जाएगा, उसी व्यक्ति के हाथ से उसका वध किया जाएगा। मतलब उपाय तो बताया लेकिन उसके अंदर एक खोच भी है। तो सबके गोद में रखा उसको, कुंती के गोद में रखा, माता के गोद में रखा, मित्र के गोद में रखा, किसी के गोद में भी उसके तीन सर और तीन पर वैसे के वैसे रहे। फिर शिशुपाल की माता ने कहा अभी कृष्ण तुम ही एक ही बच्चे हो तो अपने गोद में लेना उसको। तो जैसे कृष्ण के गोद में दिया तो दो सर और एक पैर नष्ट हो गया और वो एक सर और दो पैर वाला सामान्य जीव हो गया। तो शिशुपाल की मैया जो है वो कृष्ण भगवान के चरणों में गिरी, बोलते हे कृष्ण तुम तो मेरे भतीजे हो और तुम ही मेरे पुत्र का मृत्यु का कारण बनोगे, कुछ ना कुछ तो शाप दे दो। तो उसने कहा एक समय पर, एक मतलब एक कालावधि में, एक प्रसंग में अगर मेरा ये 100 अपराध करेगा तब मैं उसको माफ कर दूंगा, लेकिन 100 अपराध के बाद फिर उसको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शिशुपाल को सब पता था ये सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके मन में इतनी घृणा थी भगवान के विषय में। तो वो प्रसंग आया फिर आप जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ के बीच में उसने भगवान को अग्र पूजा करने के लिए योग्य बनाने के लिए ही प्रश्न उत्पन्न किया, और भगवान कैसे अयोग्य है अग्र पूजा लेने के लिए, कैसे अयोग्य है, इनकी अग्र पूजा कैसे नहीं हो सकती है, इसके बारे में जो उन्होंने निंदा करना शुरू किया तो भीमसेन और अर्जुन सब लोग ऐसे गदा और धनुष लेकर खड़े हो गए, अभी उसका वध कर देते हैं। तो भगवान ने सब इशारों को करके इशारा करके सबको रोक दिया। बोले क्यों रोक रहे हैं आप हमको? बोले मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं गिन रहा हूं। तो जैसे ही 100 बार उनके मुख से भगवान के द्वारा भगवान के लिए निंदक शब्द निकलते हैं, उसके बाद भगवान तुरंत चक्र निकालते हैं और शिशुपाल का वध कर देते हैं। एनीवे मैंने आपको आगे वाले कथा पहले सुना दी, अभी तो शादी का प्रसंग है उसके। तो रुक्मी जो उसका मित्र था, उसको इच्छा थी कि अपनी बहन की शादी शिशुपाल से की जाए। भीष्मक की इच्छा थी कि कृष्ण के साथ की जाए, लेकिन भीष्मक के सामने ये उद्दंड बालक जो पुत्र था उसका, उसका कोई बात बनी नहीं। आप जानते हैं ना, बचपन में तो हम पिताजी बड़े पुत्र पर बड़ा राज करते हैं, उसको आदेश करते हैं। जैसे पुत्र बड़ा होता है, हम बुड्ढे होते हैं, फिर पुत्र के सुनने पड़ते हैं। पुत्र पिता को गाली देता है, उसको आदेश करता है, चुप बैठ वैसा बोलता है, वहाँ बैठ जाओ, बात नहीं करना है आपको बीच में। उसी तरह से रुक्मी उद्दंड हो गया, बलदंड हो गया, उसकी वजह से भीष्मक उसके सामने कुछ बोल नहीं पाए। और न्योता दिया गया, सगाई हो गई, शादी की तैयारी होने लगी, मुहूर्त निकला, रुक्मिणी का श्रृंगार भी होने लगा, सारी शादी की विधियाँ होने लगी शिशुपाल के नाम से। तो रुक्मिणी बड़ी अधीर हो गई, उन्होंने कहा कि मुझे जीना नहीं है, मैंने बचपन से श्री कृष्ण को वर के रूप में स्वीकार किया है, मैं उसी की पत्नी होने वाली हूँ, वो होना चाहती हूँ, और जिस तरह से मेरे भाई ने सब इंतजाम किया, लगता है मैं शिशुपाल की पत्नी बन जाऊँगी। इसके पहले कि मैं शिशुपाल के गले में गले की उसकी माला ग्रहण करूँ, मैं आत्महत्या करके जीवन का अंत करना चाहती हूँ। लेकिन वो शतरानी थी, वो इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाली नहीं थी। फिर उसने सोचा कि ऐसा युक्ति किया जाए कि एक विश्वस्त विश्वासु ब्राह्मण को चुनकर एक खत भेजा जाए द्वारका में। तब भगवान द्वारका में थे, और लास्ट कोशिश की जाए कि अगर भगवान तक खत पहुंचा, मेरे हृदय की भावना भगवान तक पहुंची, तो फिर भगवान शायद अगर उनकी इच्छा होगी तो मान जाएंगे, शायद वो आएंगे और वो शायद मुझे हरण करके ले जाएंगे। ऐसा बहुत बड़ा योजना बनाया उसने, सब में किंतु परंतु था, इफ एंड बट, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अच्छी योजना तो मन में बना ली है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि लक्ष्य जो है हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और लक्ष्य तक जाने का मार्ग भी है, मन में तैयार होना चाहिए। आगे क्या होगा वो आगे देखेंगे, भगवान क्या करना है, हमारी तरफ से जो रास्ता मैप है, रोड मैप, वो पूरी तरह तैयार होना चाहिए। रुक्मिणी देवी के मन में रोड मैप पूरा तैयार था, फिर उसने खत लिखा। अभी सब लोग आज एकादशी के दिन ये लव लेटर को सुनिए, हाँ, इस लव लेटर को सुनकर मन में काम वासना जागृत नहीं होगी, इस प्रेम पत्र को सुनकर हमारे मन में जो काम वासना है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम आपको एकादशी में हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए रुक्मिणी का ये प्रेम पत्र सुना रहे हैं। क्या कहते हैं रुक्मिणी? उसने एक विश्वासु ब्राह्मण को चुन लिया, और श्रुत्वा गुरान भवन सुंदर शुण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरहितोंग पापम रूपम दृशाम दृषितम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युत विशति चित्तम पत्रम ते। हे प्रभु, जो आपके दिव्य शब्द और रूप और लीला के विषय में श्रवण करता है, वो केवल श्रवण के द्वारा आपके नाम रूप गुण में मग्न हो जाता है, उसके भौतिक दुखों का अंत होता है, और प्रेम पूर्वक वो अपने आप को आपको अपने हृदय में स्थिर करता है। आपको इस अलौकिक प्रेम के माध्यम से वो अपने अंतर हृदय में आपका हमेशा दर्शन करता है। इस मार्ग से जाने से उसकी सारी कामना पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से मैं भी, सब लोग सुनिए ध्यान से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रुक्मिणी कह रही है इसी प्रकार से मैं भी आपके विषय में श्रवण किया करती थी, लेकिन मैं आपके विषय में जो भाव है वो प्रकट करूं कि नहीं, इस संकोच में थी। लगता है मैं निर्लज्ज हूं, और निर्लज्ज होकर आपके विषय में मेरा प्रेम जो है कन्या होने पर भी मेरी तरफ से प्रकट कर रही हूं, लेकिन क्या करूं हे श्याम सुंदर, आपने मेरे हृदय पर अधिकार करके मुझे पूर्णता मोहित कर लिया है, इसलिए मैं निर्लज्ज होकर आपके सामने ये स्वयं प्रस्तुत कर रही हूं। आमतौर पर वैदिक ट्रेडिशन में कन्या कभी भी प्रेम पत्र लिखती नहीं है, एक ऐतिहासिक प्रेम पत्र है जो एक वैदिक कन्या ने अपनी तरफ से अपने प्रियकर को लिखा हुआ है। निश्चित रूप से मैं एक अल्पवयीन कन्या हूँ और मैं आपको खत लिख रही हूँ, इससे आपको लगता होगा कि मेरा चरित्र ठीक है कि नहीं है, लेकिन हे भगवान, हे प्रिय मुकुंद, हे पुरुष सिंह, जो पुरुषों में सिंह है, आप तो सब मानवों में श्रेष्ठ हैं। मैंने कभी मेरे घर के दहलीज के बाहर भी पाँव रखा नहीं है, मैं एक शील संपन्न पवित्र स्त्री हूँ, और अगर मैं ऐसी हूँ और आपके विवाह की कामना करती हूँ, तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है।
कोई भी पवित्र कामिनी, कोई भी पवित्र कन्या, कोई भी वैदिक स्त्री आपके स्वभाव पर, आपके ध्यान पर, आपके ऐश्वर्य पर, आपके करुणा पर, आपके अधिकार पर मोहित होकर आपके लिए, आपके प्रति विवाह करने की इच्छा कर सकती है। आप लक्ष्मी देवी के पति हो, भक्त वत्सल हो, इसलिए मैंने आपकी नित्य दासी बनने का निश्चय कर लिया है। देखो कितने नम्र है वो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। रुक्मिणी का पत्र जो है ये नम्रता से भरा हुआ है और भाव से भरा हुआ है। वो ये नहीं कह रही कि मैं आपसे पत्नी बनना चाहती हूं, मैं आपकी नित्य दासी बनने का निश्चय कर चुकी हूं। प्रिय प्रभो, ये मेरा जीवन मैं आपके चरण कमलों में अर्पण कर रही हूं। मैंने आपको मेरे नियोजित पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप भी मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हे कमल नयन, हे समर्थ पुरुष, मैं अभी आपकी हो गई हूं। अगर सिंह का भक्ष जो होता है ना, अगर कोई कोल्ला यानी क्या बोलते हैं उसको, भेड़िया चुरा कर ले जाए तो अच्छा नहीं होगा ना। सिंह का भक्ष सिंह को लेना चाहिए, बीच में आकर कोल्ला जो है उसको चोरी करके लेके जाना नहीं चाहिए। ये बहुत हंसी वाला बात होगी, हंसी वाली, हास्यास्पद। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके शिशुपाल और तत्सम इतर अनेक राजाओं से मेरा हरण होने के पहले आप आकर मेरा स्वीकार कर लीजिए। हे प्रिय नाथ, हो सकता है मैंने पिछले जन्मों में वृक्षारोपण किया होगा, कुएं खोदे होंगे, ऐसे अच्छे रास्ते बनाए होंगे, हाँ ब्राह्मणों को दान दिया होगा, ऐसे मैंने अच्छे पुच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, और इसलिए अगर मेरे ऊपर नारायण प्रसन्न हो गए होंगे तो हे बलराम के बंधु कृष्ण, मेरी ऐसी इच्छा है। अभी वो एकदम डायरेक्ट बात कर रही है, हाँ उसके खत में भी ऐसा प्रिपरेशन है, पहले गौरव करती है, फिर स्थिति का वर्णन करती है, फिर अभी डायरेक्ट प्लान पर आ रही है कि आपको करना क्या है। मेरी ऐसी इच्छा है, पहले क्या बोलती है कि मैंने, हो सकता है कि पिछले जन्मों में पेड़ लगाए होंगे, रास्ते बनाए होंगे, कुएं खोदे होंगे। वसुदेव महाराज भी जो है कृष्ण के पिता, नंद महाराज भी जो है वो बार बार इसको दोहराते हैं कि इस संकट से भी कृष्ण बच गए, इसका मतलब जरूर हमने पिछले जन्म में कुएं खोदे होंगे, रास्ते बनाए होंगे, गरीबों की देखभाल की होगी। ये बहुत अच्छे कार्य हैं। हाँ, बारिश का मौसम है, सब लोगों को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। एकादशी के दिन बम्बई जाने के बाद में आप एक एक पेड़ लगाइए, और इसे कहा गया है कि अगर आप 6 पेड़ लगाएंगे इस विश्व में अपने जीवन में, तो जितना ऑक्सीजन आप जीवन भर लेते हो वो आप प्रकृति को वापस कर रहे हो। जितना ऑक्सीजन प्राणवायु आप प्रकृति से स्वीकार करते हो एक जीवन में, उतना सारा ऑक्सीजन प्रकृति में 6 पेड़ लगाने से दोबारा उत्पन्न होता है। तो जितना आप ले रहे हो वो 6 पेड़ लगाने के बाद में आप प्रकृति को वापस दे रहे हो। तो कहते हैं कि ये काम मैंने अच्छे काम किए होंगे और उससे भगवान नारायण जो हमारे पूजनीय हैं वो प्रसन्न हो गए होंगे। तो हे बलराम बंधु कृष्ण, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप यहाँ आकर मेरा हरण कर लें, मेरा पाणी ग्रहण कर लें। मैं ये चाहती हूँ कि शिशुपाल और उसके साथियों का स्पर्श मुझे होना नहीं चाहिए। ऐसा पत्र भेजकर रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को बुला लिया। तो उस समय श्री कृष्ण कालयवन और जरासंध के युद्ध में थे। तो कालयवन की कथा तो आपने सुनाई है मैंने आपको, जब कालयवन आया तो भगवान ने उसको ताल दिया और सीधा गुफा में चले गए। कालयवन गुफा में चला गया और मुचुकुंद ने उसको देख लिया, जगने के बाद में तो जलकर समाप्त हो गया और मुचुकुंद पुंडलिक के रूप में जन्म लिया। उसके बाद जरासंध ने आक्रमण किया दूसरी दिशा से 24 अक्षौहिणी सैन्य लेकर। तब कृष्ण बलराम बाहर निकले और वो आह्वान दे रहा था, सावधान सावधान करके उसके सामने से निकल गए। तो उसको लगा भगवान डर रहे हैं मुझसे, तो बहुत द्वेष आया उसको, उत्साह आया, बहुत जोर से गाली देने लगा, डरपोक कायर, युद्ध कर मुझसे, मेरे साथ युद्ध करना मतलब गाय चराने जैसा नहीं है, तुम तो गाय चराने में एक्सपर्ट हो, शस्त्र चलाओ और मुझसे युद्ध करो। फिर भी भगवान निर्विकार होकर चलते रहे। पहाड़ पर चढ़े तो जरासंध ने पहाड़ को अग्नि लगा दिया, चारों तरफ से अग्नि के लपेट में पहाड़ आ गया। तो भगवान ने उस जलते हुए पहाड़ से छलांग लगाई और द्वारका में उतर गए, वहां से रथ लिया। और जब रथ लेने का समय मतलब जब पहुंच गए तो ये ब्राह्मण जो खत लेके निकला था उस समय पहुंच गया। ब्राह्मण का भगवान ने स्वागत किया, फल फूल से उसकी पूजा की, अर्चना किया, आने का क्षेम कुशल पूछा, तो ब्राह्मण ने बहुत अगत्य से उनको बताया कि कितनी इमरजेंसी है, समय बहुत कम है, रुक्मिणी देवी का विवाह होने जा रहा है, कल का मुहूर्त है, सब विधियां हो चुकी है, अभी कल के दिन माला वरमालाएं गिरेंगी, उसके पहले आपको पहुंचना है। तुरंत दारुक को बुलाया भगवान ने और रथ चलाने का आदेश दिया। हवा की गति से ओवरनाइट भगवान द्वारका से निकले और विदर्भ पहुंच गए। उतने में यहां पर विदर्भ में खबर पहुंच गई कि एक ब्राह्मण गुप्त रूप में खत लेकर पहुंच गया है। तो शिशुपाल के पिता दमघोष जो थे, उन्होंने अपने बड़ी सेना को एकत्र किया और सज्ज रहने का आदेश दिया। जरासंध के मित्र थे वो, उन्होंने भी अपने सेना को सज्ज रहने का आदेश दिया। उनको पता था कि श्री कृष्ण आएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और हमको शिशुपाल के युद्ध विवाह कराने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। तो ससज्ज हो गए और वहां से भगवान आ गए और यहाँ पर रुक्मिणी तड़प रही है, एक एक विधि आगे बढ़ रहे हैं, श्रृंगार भी आगे बढ़ रहा है, उसको श्रृंगार किया जा रहा है, उसके पाँव में महावर लगाया जा रहा है, उसके गले में अलंकार डाले जा रहे हैं, उसके बालों का श्रृंगार किया जा रहा है, उसको अच्छे अच्छे सिल्क के वस्त्र पहने जा रहे हैं, उसके उंगलियों में, उसके पैरों की उंगलियों में गहने डाले जा रहे हैं। और वो सोच रही है कि ये मैं गहने किसके लिए पहन रही हूँ, क्या इस गहनों को पहन के और नव वधु बन के मेरा विवाह कृष्ण से होगा कि जबरदस्त शिशुपाल के साथ होगा, क्या मैं पहले कैसे आत्महत्या कर लूँ अगर पर्याप्त यही निश्चित है। इसे दुविधा अवस्था में थी वो। और उतने में श्री कृष्ण वहां पहुंच गए, फिर चिंतित रुक्मिणी के सामने वो ब्राह्मण आया जो खत लेकर गया था। जैसे ब्राह्मण आया, आने के पहले उसके बाएं अंग फटफड़ाने लगे, उनकी आंखें, उनकी बाएं भुजाएं फटफड़ाने लगी, तो ये शुभ शकुन था। तो ब्राह्मण ने कहा श्री कृष्ण आ गए हैं, आप चिंता मत करना। तब वो निश्चिंत हो गई। और फिर दूसरे दिन उन्होंने डिटेल खत में लिखा था कि हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो अम्बा देवी के मंदिर में एक विधि होती है, तो नई दुल्हन जब भी बहू बनने वाली है उसको बहू बनने के पहले अम्बा जी का आशीर्वाद लेना पड़ता है, तो सभी जितनी भी सौभाग्यवती माताएं हैं वो सब उनको लेकर जाती है इस नववधु को, और सागर संगीत अम्बा जी की पूजा होती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है और फिर उसका विवाह विधि होता है। तो वो निकली, उन्होंने ब्राह्मण का दर्शन तो कर लिया था लेकिन श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ था। तो उनकी आंखें जो है, कमल नयन आंखें जो है, सब जगह ढूंढ रही हैं, कहाँ है मेरे कमल नयन कृष्ण, कहाँ है वो मेघवर्ण श्याम सुंदर जी जो मेरे दिल के वर हैं, वो कहाँ पर है, सब जगह दिख रही है वो। और रुक्मिणी देवी इतनी सुंदर थी, ऊपर से 16 श्रृंगार किए हुए थी, देवता भी उनके सौंदर्य के लालायित थे। तो अभी वो शिशुपाल की होने वाली है, मेरी नहीं हो सकती, ये भावना से जितने भी वीर वहाँ पर आए थे वो सब लोग अपना जगह पकड़ के दोनों तरफ खड़े हो गए, घोड़ा में बैठकर अपनी अपनी जगह पकड़ के जिस रास्ते से रुक्मिणी जाने वाली है उसके पर खड़े हो गए सब लोग, आखिरी बार उसको कन्या के रूप में देख लें। अभी आज के शाम को तो वो किसी की पत्नी हो जाएगी, फिर क्या उसको हम देखें, क्या हमारे नेत्रों को आनंद मिलेगा। सभी राजकुमार जितने वीर थे, शादीशुदा भी थे, बिना शादी के थे, सब लोग खड़े हो गए, कहाँ से, रुक्मिणी के महल से अम्बा देवी के मंदिर तक, कहीं ना कहीं दर्शन हो जाए तो अच्छा है। फिर रुक्मिणी निकली, दोनों तरफ देख रही है, किसी वीरों के बीच में श्री कृष्ण तो नहीं है, लेकिन कहीं दर्शन नहीं हुआ। फिर चिंतित हो गई, कहाँ है वो, कहाँ है, कब मिलेंगे, कब दर्शन देंगे, कब तारण करेंगे मेरा, चल रही है, दिल में धड़कन बढ़ रही है, आंखें चंचल होके यहाँ वहाँ डोल रही है, देख रही है मेरे प्रियतम कहाँ है, कहाँ से मेरा उद्धार करेंगे। मंदिर तक पहुँचती है फिर भी दर्शन नहीं होता है, फिर मंदिर में जाना पड़ता है। मंदिर जाते हैं और सभी सौभाग्यवती माताओं के साथ में, कन्या विवाहित स्त्रियों के साथ में उनकी गंगा की पूजा होती है, और फिर अपने होने वाले पति का नाम लेकर एक मंत्र बोलना होता है। तो ब्राह्मण जो है उसके, वो अपने, हमें शादी जब करते हैं तो हम लोग मंत्र नहीं बोलते ना, ब्राह्मण मंत्र बोलता है बीच बीच में, फिर आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपके दादा का नाम क्या है, आपके नाना का नाम क्या है, बीच में पूछते रहता है, फिर वो हम लोग उसको बोलते हैं, फिर वो उस मंत्र में उस नाम को डालकर उस मंत्र को बोलता है, अमुक तमुक पौत्रिम, अमुक तमुक पुत्रिम, हाँ संभोग धारिणिम सालंकृत यथाशक्ति ऐसे बोलते हैं, फिर पाणी ग्रहण करते हैं। तो जब वो अपने होने वाले पति का नाम लेकर मंत्र उच्चारण उसको खुद को करना होता है, तो बड़े धीट स्वभाव से, बड़े धाड़स से अपनी माता के सामने, अपने वरिष्ठ जो दादा दादी नानियाँ सब वहाँ पर, सब लोग सीनियर माता जी खड़े हैं, उनके नेतृत्व में, उनके उपस्थिति में सब उत्सव हो रहा है, सबके सामने वो श्री कृष्ण का नाम लेती है। शिशुपाल का नाम बोला जाता है कि आप ऐसे बोलो, तो उसमें वो कृष्ण का नाम लेकर मंत्र बोल लेती है। तो माता बहुत गुस्सा करती है उसके ऊपर कि कैसी तुम लड़की हो, हाँ आज विवाह होने वाला है तुम शिशुपाल के साथ में, किसी पराये मर्द का नाम लेती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन ये दब दब के बोला जा रहा है क्योंकि ये बड़ी सभा में कैसे डांटेंगे उसको। लेकिन ये निश्चिंत होकर बड़े विश्वास के साथ में श्री कृष्ण का नाम लेकर उस मंत्र को बोलती है कि यही मेरा वर है हे अम्बा देवी। उसका अर्थ ये होता है हे अम्बा देवी यही मेरा वर बने और इसी के लिए मैं दिल देती हूँ, वरना मैं दिल में कह रही है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। और ये पूरी विधि हो जाती है। माता पिता, माता जो है वो बहुत गुस्से में है, क्या करे, डांटे कैसे पब्लिक में उसको, लेकिन वो बड़े इत्मीनान के साथ में, विश्वास के साथ में बोल रही है। और जब टर्न करती है और मंदिर से उतरती है तो बाएं साइड में श्री कृष्ण भगवान तैयार रहते हैं, अपने रथ को लेकर तैयार रहते हैं। और किसी को कुछ समझ में आया, किसी को कुछ विचार भी करने का मौका नहीं मिलता है, उतने क्षण में श्री कृष्ण भगवान रथ में उतर कर तुरंत इसका बाया हाथ पकड़ के उसको उठाकर अपने रथ में बिठाते हैं और एक क्षण के अंदर रथ को यू टर्न करते हैं और द्वारका की ओर चलने लगते हैं। ऐसे कहते हैं कि जब श्री रुक्मिणी देवी रस्ते से गुजर रही थी तो एक एक करके, इसे हम हमेशा होना वो पत्ते के मंगले का उदाहरण देते हैं, एक टिस्की मारेंगे ना तो सारे पत्ते लाइन से गिर जाते हैं, वैसे एक एक राजकुमार, एक एक वीर गिर रहा था बेहोश होकर। काम वासना इतनी प्रदीप्त हो गई थी उन लोगों की, कितनी सुंदर कन्या किसी की और की होने वाली है, जो नेत्र उसको संपर्क कर रहे हैं, काम वासना जल रही है अग्नि की तरह, तो बेहोश हो रहे थे, तो सारे बेहोश होके अपने घोड़े से गिर रहे थे। लेकिन जैसे मालूम पड़ा कि कृष्ण ने उसको उठाया है तो सब लोग जगाया, अरे उठो देखो क्या हो गया है, तो कोई और ले जा रहा है उसको, उठो। सब लोग अपने आप को संभल के उठ जाते हैं, शस्त्र को संवारते हैं और आक्रमण करते हैं। श्री कृष्ण जो है रथ तो उन्होंने मोड़ लिया है, एक हाथ में रुक्मिणी को पकड़ा है और एक हाथ से युद्ध कर रहे हैं, तो सारे जितने भी वीर हैं जो आक्रमण करते हैं सबको परास्त कर देते हैं। उतने में दौड़ के खबर पहुंचती है श्रृंगार गृह में, जहां पर श्रृंगार किया जा रहा है शिशुपाल का, तो दूल्हा बन रहा है, उसको मेकअप हो रहा है, हाँ देखो कैसा दुर्भाग्य जीव है, हाँ वो मेकअप जिसके लिए कर रहा है वो किसी को, उसको कोई और लुटा के ले जा रहा है। तो उठ जाता है शिशुपाल, कहता है मेरा दुश्मन कृष्ण मेरी होने वाली पत्नी को उठा के ले जा रहा है, अभी मैं उसका संहार करता हूं। तो रुक्मिणी कहता है दोस्त शांत हो जाओ, मैं हूं ना, आप श्रृंगार करते रहो, आपका मेकअप चलता रहे, मैं जाकर उसको लेकर आता हूं, मैं उसको मार के आता हूं, उसका वध किए बिना मैं लौट के नहीं आऊंगा, मैं आपको वादा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के दिन जो श्री कृष्ण ने अपराध किया है उसके लिए मृत्युदंड ही उसके लिए निश्चित है, और मैं उसका वध किए बिना दोबारा कौंडिन्य नगरी में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा मूर्ख प्रतिज्ञा करके वो निकलता है। और फिर श्री कृष्ण भगवान तब तक बाकी सारे वीरों को परास्त करके, बेहोश करके अपने आगे चलते रहते हैं। उतने में बलराम जी वहां पर आ जाते हैं, तो बलराम को पता है गड़बड़ जरूर होगी, जिस तरह से कृष्ण निकले हुए हैं अकेले, मुझे भी जाना चाहिए, सेना को लेकर द्वारका की। बलराम जी वहां पहुंचते हैं बीच रास्ते में, और उतने में शिशुपाल पहुंचता है सेना को लेकर, तो सावधान मेरी बहन को ले जाने पहले मृत्यु का सामना करो, मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरे रूप में, युद्ध करो मुझसे। तो अभी वो वापस गोल घूम जाते हैं, एक बार रुक्मिणी को देखते हैं, बड़े चिंतित है क्या करे बेचारे, एक तरफ अपने प्रिय पति है जिसके लिए जीवन भर इंतजार किया, उसकी प्राप्ति हो चुकी है, लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है, इतना आनंद है, एक तरफ प्रिय भाई भी, ऐसा नहीं कि वो भाई से प्रेम नहीं था उसको, और अभी भाई और पत्नी, पति एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, मृत्यु को ललकार रहे हैं। श्री कृष्ण बाबा बहुत घनघोर युद्ध करते हैं लेकिन उसको मारते नहीं हैं, तो पता है अरे शादी के दिन उसके भाई का वध किया तो अपनी पत्नी को कैसा आनंद मिलेगा, तो क्या करते हैं वहां से बलराम भैया आते हैं, इनका युद्ध को बीच में रोकते हैं और भाभी पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन जमाने के लिए कहते हैं, अरे कन्हैया कैसे व्यक्ति हो तुम, देखो देखो भाभी के मुंह पर चिंता कितनी है, देखो तुम्हारे हाथ से बाण चल रहे हैं और कुछ चिंता हो रही है कि एक बाण लगकर मेरा भाई मर जाएगा तो कितना दुख हो रहा है उसको, ये सोचकर भी दुख हो रहा है, कुछ अपने पत्नी के बारे में सोचो। तो फिर भगवान ऐसा युद्ध करते हैं कि शिशुपाल को इतने बाण मार देते हैं कि सारे बाण से वो रथ से गिरकर जमीन पर गिर जाता है, और फिर ऐसे बाण मारते हैं कि जमीन पर बाणों की शैया में वो लॉक हो जाते हैं, हाथ भी नहीं हिला सकते। फिर वो रथ से उतरते हैं, रुक्मिणी को हाथ अपने हाथ में लेते हैं और हाथ पकड़ कर लेके आते हैं, बलराम जी रथ में उतरते हैं और वहां पर आते हैं और बलराम जी पूछते हैं क्या किया जाए। तो कहते हैं कि वीर लोगों को अगर युद्ध भूमि में मारा जाए तो उनका सम्मान होता है, इसका तो मारना तो मुमकिन नहीं इसके लिए, क्योंकि ये इसका भाई है, ऐसे करो इसका अपमान करो, इसके बाल ऐसे काटो कि छोटे छोटे पुंस के बीच में रहे, ऐसे बीच बीच में। वो हमारे देखो जब हम राइस चलते हैं, राइस जब होते हैं ना, तो यहाँ पर एक राइस, फिर बीच में गैप, फिर यहाँ पर एक राइस, फिर यहाँ पर एक राइस, ऐसा पूरा खेत में ना बहुत गैप होती है, बहुत सारी बीच में एक राइस होता है, ऐसे उसके बाल काट कर ऐसे रखते हैं, बीच में खड़े खड़े बाल रखते हैं, उसकी आधी मूछ काट देते हैं और अपमानित करके उसको बोले जाओ यहाँ से। अब बेचारे ने शपथ लिया था ना, प्रतिज्ञा किया था कि मैं कृष्ण को मारे बिना, उसका शीश लिए बिना कौंडिन्यपुर वापस नहीं आऊँगा। अभी तो खुद परास्त हो गया, अपमानित हो गया, तो क्या करे, वो घर जाता नहीं है फिर, और वहीं पर अपना राज्य बसाता है जहाँ पर उसका युद्ध हुआ था, उसी पर जाकर अपना राज्य बसाता है। और शिशुपाल का सारा मेकअप वेस्ट हो जाता है, शिशुपाल कुछ नहीं कर सकता है, शादी कैंसिल हो जाती है, खाना पुना वेस्ट हो जाता है और अपने घर चले जाते हैं। और फिर रुक्मिणी को लेकर बलराम जी श्री कृष्ण द्वारका में आते हैं, बड़ी धूमधाम से उनका विवाह मनाते हैं। तो ऐसे रुक्मिणी देवी का विवाह का प्रसंग है। सुखदेव जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, मराठी में कहते हैं कोल्ला, हाँ उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भेड़िया, क्या कहते हैं, जैकॉल्स, हाँ, कोल्लों के सभा से उनका भक्ष एक सिंह आता है बीच में और बड़ी शान से और इत्मीनान से और क्या कहते हैं ऐश्वर्य के साथ में, रुबाब के साथ में उसको उठा के ले जाता है। उस तरह से भगवान ने रुक्मिणी को इन सारे वीरों के बीच में से उठाया और बड़े विश्वास आत्मविश्वास के साथ में रथ में बिठाया और ले गए वो सबके सामने। फिर भीष्मक देव बड़े खुश हो गए, राजा भीष्मक, और वो सेना और दहेज और ब्राह्मणों को लेकर, दासियों को लेकर, सोना जेवरात रथ सेना लेकर द्वारका पहुंचते हैं और भगवान को बड़ा सुंदर दहेज अर्पण करते हैं और भगवान के हाथ में उनका विवाह होता है। तो रुक्मिणी हरण की कथा जो है सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं, जिसमें हमारे लोगों का श्रवण करने से कल्याण हो जाता है, आत्मा की शुद्धि हो जाती है। तो रुक्मिणी हरण करने में ले भगवान श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। तो ये रुक्मिणी जो थी ये चंद्रावली का अवतार थी। हम सबको जानना जरूरी है कि जब श्री कृष्ण भगवान ब्रज को छोड़कर द्वारका में चले गए तो गोपियों को उनके बिना रहना मुमकिन नहीं था, उनका जीवन स्थिर रखना मुमकिन नहीं था। तो सभी गोपियां जो है वो कृष्ण के रानियों के रूप में विस्तारित हो गई। तो रुक्मिणी देवी जो है वो चंद्रावली जी का रूपांतर है और सत्यभामा जो है वो राधा रानी का अवतार है। इस तरह से अलग अलग रानियां जो है वो भगवान की पत्नियां बनी, अलग अलग जो गोपियां हैं भगवान की पत्नियां बनी, और उस तरह से भगवान का उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में सेवा किया, तब इनका यहाँ का विरागनि थोड़ा सा काबू में रखना मुमकिन हो गया। श्री कृष्ण भगवान की जय। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबका एकादशी व्रत बड़े अच्छे तीव्र भगवान के स्मृति के साथ में संपन्न हो, यही हमारे विट्ठल और रुक्मिणी के चरणों में प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।